नमस्कार श्रोताओं, छिंगड़ा ओवरेंज से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से पूरा देश कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है और नागपुर छिंदवाड़ा के बीच में विकासखंड सौसर की सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से आवाज उठ रही है कि यहां पर कोविड सेंटर बनाया जाए, आज हमारे साथ में यूथ ऑफ सौसर के उपाध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल जी कोठे जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, मोबाइल वाने पे स्वागत सर आपका।
सर नमस्कार। नमस्कार, सभी का धन्यवाद।
सर, कोरोना संक्रमण को लेकर अभी आपके क्षेत्र में किस तरह जागरूकता देखी जा रही है?
सर अभी जो स्थिति चल रही है, बहुत कोरोना ने विकराल रूप ले चुके हैं। हमारे गांव गांव तक कोरोना फैला हुआ है और हम हमारे तहसील सौसर की हालत देखें तो रोज करीब करीब 10-15 के बीच में लोगों की मृत्यु हो रही है और सरकार इसका आंकड़ा जारी नहीं कर पा रही है। इस संबंध में काफी बैठकें, काफी कोरोना के संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से जो भी प्रयास उनका चल रहा है, लेकिन ये सफल प्रयास नहीं है। इसके लिए और जितने भी सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने और इसमें आगे आकर और हमारे सौसर में क्या होना चाहिए, कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों ने क्या व्यवस्था करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
जी सर, वर्तमान में जो सौसर का सिविल अस्पताल है उसमें सर किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है कोविड सेंटर को लेकर?
अभी हम लोग हमारे सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था देखें तो यहाँ पे ऊपर में जैसे कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो हो पा रही है। बेड जितने सीमित बेड है वो पेशेंट को मिल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से पेशेंट को नागपुर बिना किसी, कल की मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक पेशेंट को नागपुर छिंदवाड़ा भेजा गया, लेकिन उस वहाँ पे भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। वो पेशेंट रात में ही छिंदवाड़ा से फिर सौसर आया तो उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में हमारे सिविल हॉस्पिटल में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैं जहाँ तक सोचना, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पे जितना बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है और 100 बेड के हॉस्पिटल में इतनी बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है अगर हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग और एक विधायक और सब लोग आगे आके कि प्रशासन के सामने खड़े हो जाए, डट के सभी सभी दल एक साथ आके, सभी लोगों ने एक साथ आके बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ कोविड सेंटर खुलना चाहिए, यहाँ पे सब व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट करना चाहिए। यहाँ पे कोविड सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे यहाँ लापरवाही हो रही है और लोग मरते जा रहे हैं।
सर, कई सामाजिक कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सौसर के सिविल अस्पताल में कोविड सेंटर 50 बेड वाला खोलने के लिए एक ज्ञापन दिया है, लेकिन सर अब तक इसमें क्या पहल देखी जा रही है?
देखिए सर, ऐसे हमेशा ज्ञापन जाते हैं और कल भी हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, जिला के प्रभारी मंत्री, इनको भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया और हमारे यहाँ की स्थिति को अवगत किया गया। यहाँ की स्थिति की जो बात करें, ये सब इससे अवगत है, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा है। मेन चीज है कि यहाँ पे काम होना चाहिए और हमारे यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, रोज पेशेंट करीब करीब 100 पेशेंट के ऊपर हमारे सौसर तहसील के ही निकल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा चुकाया जा रहा है, आंकड़ा बताया नहीं जा रहा है। फिर भी जो भी पेशेंट निकले, पेशेंट अब कोरोना फैल चुका है तो पेशेंट आएंगे, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि में इतना पावर होना चाहिए, हमारे जो भी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि है और ये लोगों ने क्यों ना एक विधायक, हम एक बात करते हैं, पारनेर तहसील के लंके जी एक विधायक है, उन्होंने 300 बेड का कोविड सेंटर ओपन कर दिया एक मैरिज हॉल में और पूरी सुविधाओं के साथ। क्या एक विधायक वहाँ का कर सकता है? किसी ने अपना होटल दान कर दिया है कि यहाँ पे खाने से लेकर कोविड सेंटर के लिए दे सकता है? क्या हमारे यहाँ के लोग नहीं कर सकते? हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर डट जाए तो क्या नहीं कर सकते? लेकिन हमारे यहाँ पूरा जो माहौल है ये अलग दिशा में काम कर रहा है और कोविड के ऊपर उतना ज्ञापन देना और एसडीएम साहब से बात करना, कलेक्टर साहब से बात करना, ये तो जनप्रतिनिधि का जो असर होता है ये इन जो सरकारी अधिकारी इनसे भी बहुत पावरफुल रखता है। ये लोग डायरेक्ट जनप्रतिनिधि, डायरेक्ट सीएम को, स्वास्थ्य मंत्री को, क्या हमारे विधायक महोदय अगर स्वास्थ्य मंत्री को स्ट्रिक्टली बोले कि इतना बड़ा हॉस्पिटल 17 साल से है, क्या हमारे यहाँ 2 वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए हमारे यहाँ अभी तक? तो मैं चाहता हूँ कि इन जनप्रतिनिधि द्वारा ही यह पल और इसको स्ट्रिक्ट से दोनों तीनों पार्टियों के लोग, दोनों तीनों राजनीति को छोड़ के, यहाँ राजनीति न करे, राजनीति को छोड़ के एक मंच पे आके दोनों पार्टियां एक साथ बैठ के, और क्या स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ इतने सालों से अभी जो हुआ वो जो गया वो गया, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतने सालों से जो हॉस्पिटल बना है इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमें 2 वेंटिलेटर की आज सख्त आवश्यकता है, तो आज हो जाना चाहिए। क्या ये इतना पावर हमारे जनप्रतिनिधियों में नहीं है? ये होना चाहिए, ऐसा मेरे व्यक्तिगत विचार है।
सर, सौसर के सिविल अस्पताल में दवाइयाँ और इंजेक्शन के लिए किस तरीके की वर्तमान व्यवस्था?
दवाइयों में जो रेगुलर जो चल रहा है वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। जो रेडमिसिवर जो इंजेक्शन है वो भी अवेलेबल नहीं है, वो तो पूरे जिले में अवेलेबल नहीं है जितना हम लोग देखते जा रहे हैं। यहाँ सामान्य जो रोज ओपीडी लगती है वैसी ओपीडी लग रही है, और जो पॉजिटिव कोरोना टेस्टिंग हो रही है जिनको पॉजिटिव निकल रहे उनको अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन कर रहे और वहाँ पे, लेकिन जो उनको जो दवाइयाँ और जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो प्रॉपर नहीं है। जो पूरे उसके ऊपर हमारे यहाँ के सभी लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने और जिन लोगों ने, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अपने इंजेक्शनों की कमी हो रही है, दवाई गोलियों की कमी हो रही है, कहाँ तक प्रशासन भी कहाँ तक करेगा प्रशासन भी, लेकिन प्रशासन भी स्ट्रिक्ट नहीं है। प्रशासन स्ट्रिक्ट सब स्ट्रिक्ट, जनप्रतिनिधि स्ट्रिक्ट, तो सब चीजें अवेलेबल हो सकती है मेरे विचार।
जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान कार्ड लागू किया गया है, क्या इस महामारी में इस कार्ड का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए?
जी बिल्कुल मिलना चाहिए, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया है उनका लाभ पूरे, ये तो महामारी है ना, ये तो बीमारी देख के नहीं आती ना किसको, और लोगों की यहाँ जो कर्ता धरता व्यक्ति है वो ऐसे लोगों की, युवाओं की मृत्यु हो रही है इस महामारी से, तो ये आयुष्मान भारत का जो कार्ड है ये सभी हॉस्पिटलों में जहाँ पे भी इसकी सुविधा है ये लागू होना चाहिए मेरे विचार से।
जी सर, अभी सर हाल ही में नागपुर छिंदवाड़ा ट्रेन चालू है और नागपुर में भी हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है और हाल ही में छिंदवाड़ा भी हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है। सर, कई लोगों द्वारा मांग उठ रही है कि इस ट्रेन को बंद किया जाए जिससे कोरोना संक्रमण को कुछ हद तक रोका जा सके, सर क्या कहना है इसको लेकर?
जी देखिए सर, रेलवे विभाग ने पिछले एक साल से ट्रेन चालू नहीं की थी और पूरे देश में अभी भी बहुत से ट्रेनें बंद है, जो सुपर फास्ट जो ट्रेनें थी वो भी बंद है, कम सीमित में ट्रेनें चल रही है, तो ये पैसेंजर चलाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, और लोग किसी को भी मौका देख के ट्रेन से सफर कर रहे हैं और वहां से संक्रमित होके अपने अपने गांव में क्वारंटाइन तो हो रहे, लेकिन वो किससे कितने लोगों से संपर्क में आ रहे, कितने लोग सफर कर रहे, अभी ये ट्रेन चालू करने की कोई जरूरत नहीं है सर। ट्रेन अगर बंद होती है, जनप्रतिनिधियों द्वारा ये अच्छा मुद्दा उठाया था कि लोग ट्रेन से आना जाना कर रहे जिससे संक्रमण फैल रहा है, ये तो बिल्कुल वास्तविकता है, हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारा छिंदवाड़ा जिला भी नंबर एक नंबर दो पे है और नागपुर में भी पूरे महाराष्ट्र में नंबर एक नंबर दो पे है और यहाँ संक्रमण की स्थिति ज्यादा है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, और ये ट्रेन चालू रखने का जो मुद्दा है क्योंकि किसी को सभी बॉर्डर सील कर दी गई है तो कोई भी व्यक्ति ट्रेन से आना जाना कर रहा है, ये बंद हो जाए तो काफी बेहतर होगा मेरे विचार से।
जी सर, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्डों में जाकर स्कैनिंग की जो प्रक्रिया चल रही है सर, इसको आपके क्षेत्र में किस तरह देखा जा रहा है?
सर, ये वार्डों में जो स्क्रीनिंग की जो बात चल रही है ये उतना कारगर नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग में भी लोग भी तो डर रहे हैं, अभी तो जो वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोग डर रहे हैं और ये स्क्रीनिंग करने के लिए बाहर कैसे आएंगे, रोज रोज स्क्रीनिंग होनी चाहिए लेकिन उतना प्रभाव स्वास्थ्य विभाग का पड़ नहीं रहा है कि उतने लेवल पे स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। जिस पिछले बार कोरोना में जिस समय कुछ एक भी पेशेंट नहीं था और उस समय कोई भी बाहर का व्यक्ति आता उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी स्क्रीनिंग, उसका टेम्परेचर, उसके घर को सील करना, ये सब चीजें बहुत स्ट्रिक्टली होती थी, लेकिन अभी ना स्वास्थ्य विभाग और ना ही कोई अन्य प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है।
बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई, सर इस महामारी में किस तरह मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, क्या कहना चाहते
हैं? सभी देशवासियों को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पिछले हम लोग एक साल से देखते आ रहे कि पिछले वर्ष भी बाबा साहेब की जयंती, रामनवमी और अन्य जयंतियां जो थी, हनुमान जयंती और अन्य त्योहार थे, हम लोगों ने सादगी पूर्वक अपने घर पे ही मनाया। और इस बार भी ऐसा महामारी का प्रकोप हमारे तहसील सौसर और हमारे देश के ऊपर छाया हुआ है, तो हम लोग पूरी जनता से निवेदन भी करते हैं और अपने घर पे ही जो भी जयंती है, जो भी त्योहार है, सादगी पूर्वक अपने परिवार के साथ मनाएं और अपने घर पे और इन महापुरुषों को, देवी देवताओं को नमन करते हुए, हमारे जो ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं उसको हम लोग, उनको नमन करते हुए इस संकट से उबारने की हम लोग प्रेरणा करेंगे
जी।
ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ सर।
जी सर, सर यूथ ऑफ सर कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरीके से जागरूकता अभियान चला रहे हैं?
देखिए सर, यूथ ऑफ सर तो हर इस क्षेत्र में भी अपना जागरूकता अभियान चला रहा है। जैसे कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा है तो वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहा है, तो सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेरणा हम लोग जनता तक पहुंचा रही है। अभी हमारे द्वारा गावने मैडम के द्वारा जो अर्क बनाया गया था इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तो हम लोगों ने करीब करीब 10 गांव में इसका वितरण किया गया है। और हमारे द्वारा जो भी प्रयास होता है यूथ ऑफ सोशल के द्वारा, तो हम लोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है और हम लोग कुछ ना कुछ फिल्में करते रहते हैं।
जी, तो ये थे यूथ ऑफ सौसर के उपाध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल जी कोठे, जिन्होंने सौसर सिविल अस्पताल के साथ साथ अपने क्षेत्र की कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी मोबाइल वाणी पर साझा की। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। गोपाल जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। सभी को नमस्कार।
छिंदवाड़ा वालेंस से आपका दोस्त योगेश।